अब ये मैंने आपको बताई है ना हदीस में क्या क्या रिवॉर्ड्स हैं उसके, अब मैं खुद नहीं बताऊंगी, आप लोग ये सारी हदीस में से सिर्फ रिवॉर्ड्स नोट डाउन करें कि जैसे मिसाल के तौर पे एक मिसाल आपको देती हूँ कि अल्लाह ताला के अर्श का साया मिलेगा उस दिन जिस दिन उसके साये के सिवा और कोई साया नहीं होगा, ठीक है। तो और क्या क्या इसमें चीजें आई वो आप इंशाल्लाह लिखेंगे ताकि आपको इसका पता चले कि इसके रिवॉर्ड कितने बने, क्योंकि जब इंसान को इसकी रिवॉर्ड पता चलते हैं ना तो फिर देखिए माफ करना आसान हो जाएगा। और जहां भी देखिए एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को ऐसे माफ कर रहा होगा वहां भी उस सोसाइटी का तो सोचें कैसी होगी वो। तो देखिए कर्ज देने के कुछ असूल हैं, सबसे पहली तो ये बात है कि कोई कर्ज मांगे तो खुशी से दे दो, कर्ज हसना दे दो, वो ना दे पाए तो मोहलत दे, बिल्कुल ही ना दे सके तो माफ कर दो। लेकिन दूसरी तरफ इस्लाम ये भी कहता है कि लोग कर्ज भी ना मांगने की आदत डाल लें, इसको भी डिस्करेज करता है। लेकिन जहां पे हमने अभी बात की थी ना कि देने को इस्लाम कहता है सदका करो सदका करो सदका, दूसरी तरफ लोगों को कहता है कि तुम भी हाथ ना उठाते फिरो कि हर एक के आगे हाथ मांगने के लिए फैला दिया। समझ आ गई बात? इसी तरह यहाँ पे कर्ज कोई मोहलत किसी को चाहिए तो उसको मोहलत दो, नहीं दे सकता तो माफ करो। दूसरी तरफ लोगों को कहा अब तुम भी ये नहीं है कि तुम कर्ज ही मांगने पे तुल जाओ हर बात बात पे, अब ये छोटा घर है इसे बड़ा लेना है अब कर्ज ले लिया, अब गाड़ी है ये नहीं पसंद आ रही नए मॉडल की लेनी है अब कर्ज ले लिया, अब ये शादी करनी है अब उसके ऊपर फजूल रसूमात है वो तो अदा करनी है उनके बगैर तो हमारा गुजारा नहीं अब कर्ज ले लिया। तो कर्ज ऐसे नहीं है चीज, देखें कर्ज वो चीज है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स की नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ाते थे जो कर्जदार होता था। कर्ज ऐसी चीज नहीं है आराम से बस कोई बात नहीं कर्जा ही है ना वापस कर देंगे, अगर ये वो बंदा जो मर गया होता था उसके जो उसने कुछ माल छोड़ा होता था उसमें से कर्ज अदा हो जाता था फिर तो नमाज जनाजा पढ़ा देते थे, अगर नहीं अदा होता था तो बाद में जब आपके पास माले गनीमत में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिस्सा मिलना शुरू हो गया था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उसका कर्ज अदा करते थे फिर उसकी नमाज जनाजा पढ़ाते थे, और अगर नहीं हो सकता था तो नहीं पढ़ाते थे कि पूछते थे इसके ऊपर कर्ज तो नहीं है, इतनी बुरी चीज है कर्ज। और ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्ज से पनाह मांगा करते थे इतना नापसंद करते थे, दुआ है ना अल्लाहुम्मा इन्नी औजु बिका मिनल मअसमी वल मगरम, गुनाह से और कर्ज से अल्लाह ताला मुझे अपनी पनाह में रखना। तो एक शख्स ने पूछा या रसूल अल्लाह आप कर्ज से आप इतनी मतलब क्यों पनाह मांगते हैं, फरमाया जब इंसान कर्ज लेता है तो उसका हाल ये हो जाता है कि जब बात करता है तो झूठ बोलता है और वादा करता है तो पूरा नहीं करता, ऐसे ही हो जाता है कर्ज ले लेता है तो फिर क्या करता है, जो वो उसे पूछेगा कब अदा करना है नहीं जी फलां तारीख को कर दूंगा फलां को कर दूंगा, आगे से आगे करता जाता है वादा करता है नहीं अब बस कसम से मैंने अब इस दफा तो मेरा आपसे पक्का वादा है फिर वो पूरा नहीं करता। और एक हदीस में यह है कि शहीद का भी हर गुनाह माफ हो जाता है सिवाय कर्ज के, यानी शहादत कितना बुलंद दर्जा है लेकिन शहीद के भी बाकी गुनाह माफ हो जाएंगे कर्ज जो है ना उसके ऊपर फिर भी रहेगा कर्ज का उससे सवाल होगा। और इधर देख लें आप इनको ये बताया गया, तो देखें अब ऐसी सोसाइटी के अंदर एक बंदा जब इंतहाई मजबूर हो जाएगा ना तभी वो कर्ज लेगा, और वो अगर इतना मजबूर होगा तो दूसरी तरफ कर्ज देने वाला उसको सहूलत देगा, इसलिए कि वो हदीस में है जो तंगदस्त को सहूलत देगा अल्लाह ताला दुनिया और आखरत में उसको सहूलत देगा, ठीक है अल्लाह दुनिया और आखरत में इसके लिए यानी आसानी कर देगा उसको सहूलत दे देगा, ये कितना बड़ा इंसेंटिव है उसके सामने। तो ये ऐसा तो फिर कभी नहीं हो सकता कि कोई बेचारा कर्ज लेके फिर इतना मजबूर हो जाए कि खुदकुशी करने चला जाए या उसका घर बार भी लूट जाए उसका कारोबार भी खत्म हो जाए, बाज दफा ऐसे होता है तन के कपड़े तक छीन लिए जाते हैं लोग सड़क पे आ जाते हैं दिवालिया होके घर के बर्तन तक बिक जाते हैं, तो ऐसा किसी के साथ नहीं होगा फिर जिस माशरे में ये माहौल हो, वहां पे सोचिए हमदर्दी होगी भाईचारा होगा एक दूसरे के साथ कितनी एक मोहब्बत की फिजा होगी ताल्लुकात कितने अच्छे होंगे कितना अमन और सुकून होगा। और नहीं ऐसा होगा तो फिर आपको पता ही है, जैसे हमारे यहाँ होता है कि गर्दनें काट दी जाती हैं फिर एक कर्ज लेने के लिए, वापस लेने के लिए। अब इसके बाद जो आखिरी आयत नजूल के तबार से, कुरान पाक की आखिरी आयत फरमाया, वत्तकू यौमन तुरजाऊन फीही इलल्लाह। देखें किस हुक्म के बाद ये आयत रखी गई, डर जाओ उस दिन से जब तुम लौटाए जाओगे अल्लाह की तरफ, उसके दरबार में तुम्हें जाना होगा। याद रखो तुमको वापस लौटना है, यही नहीं बैठे रहना। कितने दिन तक तुम सूद की रकमें खा लोगे, कितने दिन तक तुम ये फायदे उठा लोगे, नहीं जी बेवा है अब उसके पास कोई इनकम नहीं है, बैंक में रख के खाते हैं, ये है वो है। कितने दिन खाओगे ये, कितने दिन लोगों को लूटोगे, कितने दिन सूद के ऊपर कारोबार करके अब तुम ऐश करोगे। आखिर एक दिन तो तुम्हें वहां लौट के जाना है ना, जो अल्लाह की अदालत है। अल्लाह ताला ने देखें कैसे दुनिया से निकाल के हशर के मैदान में खड़ा कर दिया, जहां से कोई फरार नहीं हो सकेगा, भाग नहीं सकेगा। इस तसव्वुर से ही इंसान कांप उठता है। और सोच लें अगर ये आखिरी आयात हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई, तो सोचें अल्लाह ताला ने जो आखिरी हुक्म दिया वो किस चीज का दिया, तकवा। डर जाओ अल्लाह से, डर जाओ अल्लाह से। याद रखो उस दिन को भूलना ना, तुम्हें वापस जाना है। आखिरी नसीहत यही है, आखिरत का कुछ होश करो। यही बैठे रहना है क्या तुमने? अब ये बात अगर जहन में रहे तो वही काम जो हमारे लिए करने इतने मुश्किल लगते हैं हमें कि ये तो बस मैं कर ही नहीं सकती, इसके बगैर मैं कैसे जीऊंगी, है ये तो मेरे लिए बस जिंदगी मौत का मसला है, वो सारे ही काम आसान हो जाते हैं। मुश्किल लगते ही तब है जब हम ये सोच लेते हैं कि हमने यही रहना है, यही रहना है, तो तब मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। लेकिन जब ये सोच आ जाए ना कि पता नहीं आज की रात मेरी घर में गुजरेगी या कब्र में, तो फिर आसान हो जाता है। देख लो सुम्मा तो वफा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत, फिर पूरा पूरा दिया जाएगा हर शख्स को जो उसने कमाई की, वो कमाई नहीं जो कोठियां और महल दुनिया में बनाए हुए थे, अमल की कमाई। उस वक्त तुम्हारे ये आमाल तुम्हारे काम आएंगे, तो इन आमाल को जमा करो, नेकियों को जमा करो। किसी को अगर तुमने माफ भी कर दिया तो तुम्हें लग रहा नुकसान हो गया, नहीं, तुमने तो नेकी जमा कर ली, उसी का उस दिन हिसाब होना है, उसी के बदले तुम्हें वहां पे अजर मिलेगा। और ये कोठियां, ये महल्लात, ये गाड़ियां, ये प्लाट, ये बैंक बैलेंस किस काम आएंगे? ये तो फिरौन और कारून के पास भी थे, तो वहां पे तुम्हारे नेक आमाल हैं जो तुम्हें लेके पहुंचना होगा। फिर तुम दुनिया बनाने की फिक्र में क्यों लगे हुए हो, इसी को बढ़ाने की फिक्र में क्यों लगे हुए हो? कभी किसी पे जुल्म करते हो, कभी किसी से छीनते हो, अपना ही पेट भरने में क्यों लगे हो? तुम्हारे पर तो हर वक्त ये फिक्र तुम्हारे सर पे सवार रहनी चाहिए कि मुझे अल्लाह के पास जाना है, तो वहां के लिए मेरे पास क्या है, मैं वहां क्या दिखाऊंगी? क्योंकि वहां पे वो दिया जाएगा जो तुमने किया उसका पूरा पूरा बदला। वहुम ला युज़लमून, और वो जुल्म नहीं किए जाएंगे, जुल्म नहीं होगा उनके ऊपर। जुल्म कैसे है? क्योंकि किसी इंसान के ऊपर या तो कोई जो गुनाह उसने ना भी किया वो भी उसके सर डाल दिया जाए, दुनिया में ये जुल्म होते हैं ना, मजलूम के ऊपर डाल दिया जाता है, बेगुनाह के ऊपर डाल दिया जाता है। या जुल्म ये भी हो सकता है कि किसी को उसकी नेकी का बदला ही ना मिले, नहीं, जो तुमने किया होगा पूरा पूरा दिया जाएगा, नाप तोल के दिया जाएगा। फिक्र ना करो कहीं नहीं जाती तुमने अगर खलूस दिल से कोई नेकी की है, तो वहां कामयाबी पाने के लिए सूद भी छोड़ो, माफ भी करो, कर्जदारों को मोहलत भी दिया करो। अल्लाह ताला हमें इन आयात के ऊपर अमल करने वाला बनाए, क्योंकि एक जमाना आएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ऐसा जमाना आएगा कि जिसमें जो सूद नहीं भी लेता होगा उसको भी उसका गुबार तो पहुंचेगा, यानी उसकी डस्ट तो पहुंचेगी। लोग सूद मतलब वैसे नहीं कि खुद खा रहे हैं, लेकिन उसके गुबार यानी उसका जो, जैसे आज के वक्त में अब अगर बैंक में आप नहीं पैसे रखते तो फिर क्या करेंगे, तो रखने होते हैं। तो गुबार तो पहुंचा ना, तो गुबार पहुंचेगा, ऐसा होगा। ओके, पूरा निजाम ही उसका चल रहा है, तो कई चीजें तो हैं उनसे तो इंसान बच ही नहीं सकता, लेकिन कुछ चीजें हैं वो उस पे तो आप हाथ रोक सकते हैं ना। अब कुछ इस चीज के अंदर मैं थोड़ी सी बातें यहाँ पे ये करना चाहूंगी जो इसमें इतराजात किए जाते हैं। बाज लोग ये कहते हैं जरूरत के तहत लिया जा सकता है सूद, जरूरत अगर है जैसे घर लेना है तो एक के लिए लिया जा सकता है, एक से ज्यादा के लिए हराम है। तो ये कहाँ से हमने डिफाइन किया? हमने जरूरत की बात तो यही पढ़ी थी कि हराम उस वक्त ही जायज है जब जिंदगी मौत का मसला है ना, आदि ना कोई उसका वो ना करने वाला हो, जो उसकी आदिन था ना कि जो सरकशी ना करने वाला हो, बागिन ना हो, बागी ना हो, ऐसे इंसान के लिए वो सिर्फ उतनी सी अमाउंट, उतनी सी चीज लेना जायज है जो जो ऐसे मकाम पे आ गया हो कि अगर ना करेगा तो मौत है। तो ये फिर हम बस कहां से फतवे ले आते हैं पता नहीं। फिर बाज लोग कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जाती सूद था, तिजारती सूद नहीं था। ऐसी बात नहीं है, जाती सूद भी था, तिजारती सूद भी था। उस जमाने में तिजारत के ऊपर भी सूद दिया जाता था। बाज लोग कहते हैं आज का सूद वो नहीं है जो उस वक्त का होता था, उस वक्त तो लोग तंग करते थे तो इसलिए। तो आज बैंक वाले क्या करते हैं? वो तो उससे भी ज्यादा बेरहम है। जब लोग दिवालिया होते हैं तो क्या होता है, उनकी जायदादें, कारोबार सब नीलाम हो जाते हैं। फिर बाज लोग कहते हैं अगर दोनों पार्टीज राजी हों तो फिर कोई हर्ज नहीं है। तो गलत काम पे अगर दोनों पार्टीज राजी भी हो जाएं तो तब भी वो जायज नहीं हो जाता। जिना में दोनों रजामंद हो कि जिना करना है तो क्या जायज हो गया? फिर बाज लोग कहते हैं कर्जा लेने में तो किसी पे जुल्म नहीं हो रहा, तो कर्ज ले रहा है वो तो अपना कारोबार कर रहा है। नहीं, अगर मकरूज कर्ज खा की रकम को दबा ले तो जो कर्ज देने वाला है उसके ऊपर जुल्म हो गया। या उलट भी अगर हो जाता है, जिसने कर्ज लिया हुआ है उसके ऊपर भी जुल्म हो सकता है जब उसको नुकसान हो और उसको फिर भी पे करना पड़ता है, तो उसको भी उसके ऊपर भी है। अदरवाइज दूसरा जुल्म कर रहा होता है जब उससे ज्यादा सूद खींच रहा होता है। दोनों सूरतों में जुल्म है, दोनों सूरतों में हो सकता है। बाज कहते हैं कम सूद लेना ठीक है। तो देखें जिस चीज की ज्यादती हराम है, यानी ज्यादा क्वांटिटी में वो हराम है, उसकी कमी भी हराम है। अब शराब ये नहीं है कि 2 घूंट पी लें तो वो हलाल है, 10 घूंट पिए तो हराम है, ऐसा नहीं है। इसी तरह बाज लोग कहते हैं कि फिक्स डिपॉजिट में रखेंगे तो उसमें काफी मुद्दत के बाद, जब फिर शुरू में तो पैसा नहीं निकलवा सकते, तो काफी मुद्दत के बाद जो पैसे मिलते हैं क्या वो सही है? तो वो उसके ऊपर भी तो सूद ही मिलता है, वो भी सूद ही है। चेक इन अकाउंट खुलवा सकते हैं, सेविंग अकाउंट ना रखें। बाज़ उलमा ने कहा सेविंग रख लें, उसमें जो इंटरेस्ट आता है उसको गुरुबा में दे दें, क्योंकि हमारे मुल्कों से भी तो ये सूद लेते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि चेक इन ही अकाउंट सिर्फ रखा जाए। क्या पता कल को हम मर जाएं, हमारे बच्चों को तो नहीं पता होगा कि हमारे माँ बाप की क्या नीयत थी, तो वो भी कहेंगे हमारे माँ बाप का भी सेविंग अकाउंट था, हम भी रखते हैं। अब ये कैसे, ये सारी चीजें कैसे खत्म होंगी, कैसे होगा? एक दिन में तो नहीं हो सकता। इसके लिए फिर क्या है, सबसे पहले तो लोगों में ये अवेयरनेस पैदा करनी जरूरी है कि ये हराम है, ये गलत है, ये और सूद के बगैर भी चल सकती है दुनिया। अब हमारे तो ये समझा जाता है ना, सूद के बगैर तो कुछ है ही नहीं, सूद के बगैर तो कुछ चल ही नहीं सकता। नहीं, ऐसा नहीं है, सूद के बगैर भी निजाम चल सकता है। हाँ, हमारे लोग, हमारे इकोनॉमिस्ट, हमारे वो बैठ के इसके ऊपर बात करें, इस चीज के ऊपर देखें तो रास्ते निकल सकते हैं। हाँ, मगर नियत ये हो कि हाँ हमने इस हराम से बचना है, तो तो इस चीज की अवेयरनेस पैदा की जाए, इस चीज के लिए लोगों को एजुकेट किया जाए, तो तब बात है। हाँ बस अब ये है कि फमाने तुर्रा वाली बात है ना, कि जो बहुत ही मजबूर, तो अल्लाह बेहतर जानता है, वो भी किसी के ऊपर नहीं कोई फतवा दे सकता, तो अल्लाह ताला को बेहतर पता है कि किस चीज में किसको वो माफ कर दे किसको नहीं, हम तो नहीं इस चीज का कह सकते। तो इस चीज को बहुत सीरियस लेने की जरूरत है, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा हैं। अब एक और सवाल जो बहुत ज्यादा लोगों के जहनों में होगा कि इस्लामिक आजकल वो है क्या, फाइनेंसिंग और ये सब है, तो इसका क्या है? तो सूद का तो वैसे मैंने आपको बता दिया कि सूद क्या चीज होती है, खुद भी आप देख सकते हैं, अदरवाइज आप लोग islamqa.com पे क्वेश्चन कर सकते हैं, वहां पे बहुत सारे मुफ्ती होते हैं। मैं नहीं किसी चीज की मिजाज के मैं फतवे देने लगूं कि फलां वाली सही और फलां नहीं सही, क्योंकि इतनी सारी अब इस्लामिक फाइनेंसिंग भी आ गई हैं और उसमें बहुत डिटेल्स हैं, तो आप वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको माफ फरमाए, अल्लाह ताला हमें सूद जैसी लानत से महफूज रखे, अल्लाह ताला इस बुराई से हमें भी हमारी नस्लों तक को भी महफूज रखे, अल्लाह ताला वही हमें हमारे तक पहुंचाना, या अल्लाह वही हमें रिस्क देना जो इन चीजों से पाक हो, जो हराम से पाक हो। हराम के साथ ना तो दुआएं कबूल होती, ना इबादात कबूल होती है, ना नेकियां कबूल होती। अच्छा एक और बात यहाँ पे जो बड़ी अहम बात आपको याद दहानी कराना चाहती हूँ, कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम ना जानते हुए सूद खा रहे होते हैं। मसलन किसी को कर्ज दिया, तो सूद सिर्फ ये नहीं है कि आप उससे बढ़ा के पैसे ले रहे हैं, बल्कि आप मसलन मिसाल के तौर पे उससे कोई फेवर ले रहे हैं। एग्जाम्पल आप देखें, आपने अपनी मेड को कोई कर्ज दे दिया, अब उसके बाद अब आप क्या चाह रही हैं, अब मेरे घर की सफाई जरा ज्यादा अच्छी तरह करे, अब और भी मेरे दो चार काम साइड पे कर दिया करे, क्योंकि मैंने इसको कर्ज जो दिया हुआ, इसको मेरी एहसान मंद होना चाहिए कि मैंने इसको कर्ज दिया, तो ये और भी दो चार काम उसके फालतू करा लिए उससे इसी वजह से कि आपने कर्ज दिया, तो ये सब सूद है जो इजाफी आप उससे ले रहे हैं। एक हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में जो शख्स किसी को कर्ज दे और फिर कर्ज लेने वाला उसके लिए कोई तोहफा भेजे या सवारी के लिए जानवर भेजे, तो वो ना सवारी पे सवार हो और ना तोहफे को कबूल करे। मगर हाँ, इस सूरत में जबकि कर्ज देने से पहले भी इस किस्म का मामला चल रहा था और पहले से तोहफे तोहफे आपस में लेते रहते रहते थे, फिर तो ठीक है, लेकिन अब उसने आपसे कर्ज लिया है उसके बाद वो आपके लिए कोई तोहफा भेजता है, तो इसका मतलब उस कर्ज की वजह से भेज रहा है। सवारी के लिए जानवर भेजा तो इस मतलब इस वजह से ना कि वो एहसान मंद है कि आपने उसको कर्ज दिया, तो वो ये एक सूद, उसने आपसे $100 लिया, वो 100 ही वापस कर दे। अब ये जो सवारी भेज रहा है ये तो इजाफी है ना, इसीलिए इमाम अबू हनीफा जिसको कर्ज देते थे उसकी दीवार के साए में भी नहीं बैठते थे कि जरा सा भी इससे ऊपर इससे फायदा ना मैं कहीं ले लूं। तो जब किसी से कर्ज लें तो उसको उससे शुक्रिया या उससे एहसान मंदी या उससे कोई तोहफा कुछ भी ना ले, कहीं रिबा ना हो जाए। ठीक है, सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت